ஓம் சாந்தி. ஹம் சபி பாபா சித் பாஸ் பின் பின் லக்ஸ் லேக்கர் ஆய் ஹே, லேக்கின் ஏக் இம்போர்டன்ட் லக்ஸ் ஹே, ஜனம் ஜனம் கா பாக்ய பனானா. आज जरा इस पर विचार करें, सभी चिंतन करें, एक बहुत अच्छा संकल्प सभी अपने को देंगे भाग्य बनाने का. बहुत सुंदर समय हमारे सामने आ गया है, हमें भाग्य बनाने का संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो गया है. इतना ही नहीं, भाग्य बनाने की कलम भी बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है. हम क्या कर रहे हैं? भाग्य हमारे हाथ में है, इस समय हमारा भाग्य जग गया है. केवल भाग्य ने करवट ही नहीं बदली है, भाग्य पूरी तरह जग चुका है और हमारे हाथ में है. संपूर्ण अवसर है, जितना चाहे भाग्य बना लें. जिनका इस जन्म में भाग्य अच्छा नहीं रहा वो विचार करें, अब हम ऐसा भाग्य बनाएं जो हर जन्म में भाग्यवान बन कर रहे, सहज सफलता प्राप्त हो, सहज धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार अच्छे हो, परिवारों में प्रेम हो, अपनापन हो, एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे जीवन की जो रूपरेखा हम बना सकते हो, एक विजन बनाए हमारा हर जन्म ऐसा हो, हर बार हमें ऐसा जीवन मिले, ऐसे साथी मिले. देखो परिवार में क्या चाहिए, परस्पर स्नेह, सम्मान, सहयोग. कहीं भी ये तीन चीज होती हैं तो संपूर्ण सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है. व्यक्तिगत में क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, मनुष्य के पास अच्छा धन, अच्छी बुद्धि, अच्छा चरित्र, समाज में सम्मान, किसी का देश में सम्मान होगा, किसी का धर्म के फील्ड में सम्मान होगा. हमें श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो जन्म जन्म, उसका संपूर्ण बीज हम यहाँ डाल रहे हैं. सोचो क्या क्या है. एक है स्वयं में शक्तियां भरना. योग से न केवल विकर्म विनाश होंगे लेकिन हमें स्वयं में शक्तियां भी भरनी है. दूसरा अनेक योग्यताएं स्वयं में भरना, योग्यताएं भरना. योग्यताएं अनेक हैं, बीज रूप में यहाँ योग्यताएं भरेंगे, जन्म जन्म अनेक योग्यताएं हमारे पास रहेंगी. हमारे पास बुद्धि भी बहुत अच्छी रहे हर जन्म में, बुद्धि अविनाशी चीज है. जैसी बुद्धि का निर्माण हम यहाँ करेंगे, जबकि बुद्धि सदा ही हमारे पास रही है परंतु अब हमने उसकी शक्तियां नष्ट कर ली हैं, उसको फिर से मूल स्थिति पर ले जाना. बुद्धि के साथ ब्रेन काम करता है, मनुष्य का मस्तिष्क. इसके बाद बुद्धि भी बहुत अच्छी हो लेकिन मस्तिष्क कमजोर हो तो भी बुद्धि ठीक काम नहीं कर पाएगी. इसके बाद मस्तिष्क बहुत सुंदर हो लेकिन बुद्धि की शक्तियां कमजोर पड़ गई हो तो भी बहुत बुद्धिमान वो व्यक्ति नहीं रह पाएगा. टेंशन होगी उसको, थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग करते थकान होगी, अशांति जैसी फील होगी. ब्रेन का निर्माण एक बड़ा सूक्ष्म विषय है, मेडिकल साइंस इसका उत्तर देगी लेकिन ब्रेन का संपूर्ण निर्माण आत्मा के वाइब्रेशंस के प्रभाव से होता है. तो हम अपने अंदर योग्यताएं बढ़ाएं. भाग्य की बात, बाबा की दो बातें मुझे याद आ रही हैं, एक इस सीजन की है, एक पिछले सीजन की. इस सीजन की मुरली में भी वही बात है और पीछे भी वही बात है. जिसके पास निमित्त भाव और निर्माण भाव बहुत ज्यादा हैं, उनसे ही भाग्य का श्रेष्ठ निर्माण होता है। और अच्छी बात है, मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ तो निश्चित रूप से चिंतन होता है, आप सबको भी चिंतन होगा, भाग्य निर्माण का आधार निमित्त और निर्माण। यहाँ तो भाग्य यज्ञ सेवा से बनता है, योग अभ्यास से बनता है, ज्ञान देने से बनता है, पुण्य कर्म करने से बनता है, दूसरों को सुख देने से भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी पिछले सीजन में, कोई रात दिन सेवा में भागदौड़ करे, लेकिन यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल का नहीं है तो केवल 5% ही जमा होता है। तो ये जानते हुए, ये मानते हुए कि यहाँ सब कुछ परमात्म शक्तियों के द्वारा हो रहा है, विचार करेंगे सभी इस बात पर, बाबा करण करावनहार है। ये शब्द कोई नया नहीं है, बाबा ने ही बोला हो, ये भक्ति में भी प्रचलित रहा था और आचार्यों ने, बुद्धिमानों ने इस पर विवाद भी बहुत किया। कईयों ने मान लिया भगवान ही सब कुछ करता है, सुख दुख वही देता है, अच्छे बुरे काम उसकी प्रेरणा से हो रहे हैं। मैंने एक महामंडलेश्वर से जब ये प्रश्न पूछा गीता में, एक ऐसा श्लोक में एक ऐसा शब्द आ गया है, मैं ही काम हूँ, भगवान बोल रहे हैं सृष्टि रचना में मैं ही काम हूँ। तो मैंने उस महामंडलेश्वर से पूछा, काम विकार को तो गीता में बहुत बुरा माना है, महाशत्रु, सभी पापों का बीज, ये भगवान कैसे बोल रहा मैं काम हूँ? तो उसने घुमा फिरा के उत्तर दिया, लोग मानते रहे, उसका उत्तर भी यही था कि सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है, बुराई भी अच्छाई भी, लोगों ने ये मान लिया। लेकिन इसका यथार्थ अर्थ केवल संगम युग पर ही हम समझ सकते हैं कि जब बाबा नीचे आते हैं और जो उसके बच्चे बनते हैं, जिसका नाता उससे जुड़ जाता है, उन आत्माओं के साथ उसकी शक्तियाँ काम करने लगती हैं। जो अपने को उसके समक्ष संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, वो माध्यम बन जाते हैं उसके, वो जो महान कार्य कराना चाहता है संसार को बदलने का, वो उन आत्माओं के द्वारा कराता है जो अपने को संपूर्ण रूप से उसको अर्पित हो जाते हैं। समर्पण का जो बहुत सूक्ष्म चीज है, उसी का दूसरा जो स्वरूप हमारे सामने रहता है, निमित्त भाव। सब कुछ तेरा, हम केवल निमित्त हैं, तुम्हारी शक्तियां हमारे माध्यम से काम कर रही हैं, तुम्हारे गुण हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं, जिनको ये फीलिंग रहती है उनके लिए वो करण करावनहार है। बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ वही कर करा रहा है, करते हम ही हैं। यदि हम योग्य नहीं, यदि हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं, यदि हमें निमित्त भाव और समर्पण भाव नहीं, तो बाबा हमसे कार्य करा ही नहीं पाएगा। जैसे हमारे पास एक गायन का बहुत सुंदर यंत्र हो, हम उसको बजाना भी जानते हों, लेकिन उसमें कुछ खराबी हो, क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा गिटार हो, सितार हो, बहुत अच्छे हारमोनियम हो, और बहुत सारे जो यंत्र हैं, तबला बहुत अच्छा बजाते हो, लेकिन जरा सा छेद हो गया हो दोनों में, तो कुछ नहीं कर सकेगा ना। हम भी अपने को पूरी तरह जब समर्पित कर देते हैं बाबा के आगे, अपनी बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, पुरानी बुद्धि को, मैंपन की बुद्धि को, बुद्धि के अहम को, तो बाबा अपनी बुद्धि उसमें भर देता है जिसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। बुद्धि समर्पण का अर्थ ये नहीं कि हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि समर्पण का अर्थ है बुद्धि के अहम को समर्पित करना। पुराना जो विवेक हमने अपनी बुद्धि में भरा हुआ है, पुरानी मान्यताएं, पुरानी विचारधाराएं, इसको समर्पित कर देना, तो बाबा सद्विवेक और दिव्य विवेक हमारे अंदर भर देता है। तो हमें भाग्य निर्माण करना है, सभी अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें, भाग्य बनाने का समय हाथ में आया है, हमें संपूर्ण भाग्य बना लेना है। पसंद है, माताओं को पसंद है, भाइयों को, संपूर्ण भाग्य बनाना है, नहीं तो लोग कहा करेंगे हमें भी कि जब भगवान भाग्य बांटने आया तुम कहाँ सोए हुए थे, कहाँ क्या कर रहे थे तब तुम, कहावत है ना, देखो बिना पढ़े लिखे लोग हम गांव में थे, जब से छोटे थे तब से ये बात सुनते आते थे, किसी को देखते थे ना उसका भाग्य साथ नहीं देता तो लोग कहते थे भगवान ने जब भाग्य बांटा सोए हुए थे क्या, कहाँ थे। अब हमें पता चलता है कि देखो इतनी सुंदर बात रही सृष्टि पर, भगवान भाग्य बांटने आया, इतना विशाल काम हुआ कि हर व्यक्ति के अंतर मन में छुप गई कि भगवान भाग्य बांटने आया था, तुम कहाँ सो गए थे। तो हमारे घर में खेती होती है तो वो एक बहुत अच्छी बात सुनाते थे कि जब किसान गए थे ना, वो हमारे उसको कहते थे समाज को, जब हमारा वो पहला व्यक्ति गया था ना भगवान के पास, तो भगवान ने इतना सा गन्ना दिया था उसे, और उसने खेती में बो दिया, गन्ने से पेड़ हुआ, फिर उसको काट काट बोए और अब बहुत गन्ने की खेती होती है। देखो लोगों की विचारधाराएं, भगवान भाग्य बांट रहा है, हम कहां बिजी हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने भाग्य बांटने की कलम भी हमें दे दी हो और हम कलम को भी खोकर बैठ गए हो, खो जाते हैं ना पेन भी कलम भी, इंक भी खत्म कर दी हो। सभी चेक करें अपने को, भगवान भाग्य बांट रहा है तो हम कहीं उलझे हुए तो नहीं रह गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत समझदारी और विवेकशीलता की बात है कि संगम युग पर हम स्वयं को कहीं भी उलझाए नहीं। उलझ चुका है मनुष्य बहुत, आज संसार में देखने में आता है लोग अपनों से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अपने अपनों को कष्ट दे रहे हैं। ये कलयुग के अंत का स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिनसे बहुत प्यार किया, जिनकी जीवन भर पालना की, केयर की बहुत, जिनके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, अब वही समस्याओं का कारण बने हुए हैं। सभी माताएं बहुत अच्छी तरह जानती हैं, देख लो सभी माताएं कहीं आपके बच्चे आपको भाग्य निर्माण न करने दे रहे हों, कहीं किसी का पति उनको भाग्य निर्माण न करने दे रहा हो, कहीं मित्र संबंधी भाग्य निर्माण में बाधक बन रहे हो, तो ये तो कोई नहीं पूछेगा ना कि हमें उसने नहीं करने दिया तो कुछ कंसेशन मिल जाए, ये तो नहीं होगा ना। कारण कोई नहीं पूछेगा, इसलिए बाबा ने पिछली बार कहा था, याद है, कारण शब्द को हटाओ, जब तक ये कारण है तब तक मुक्ति चाहने वाले जो तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं, हे मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो, तुम उन्हें मुक्ति नहीं दे पाओगे। ये कारण तो हरेक के पास है, हरेक के पास कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन जो मनुष्य कारणों से ऊपर उठकर कारणों को निवारण करके अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकाल ले वही बुद्धिमान है। कारण बाधाएं विघन और दीवारें ये तो हर जगह खड़ी मिलेंगी, सबके साथ हैं, लेकिन हम अपना मार्ग स्वयं निकाल लें। इसलिए पहली चेकिंग खड़ी करें और चेकिंग करने के बाद मार्ग निकालें। हम कहीं यदि उलझ गए हैं, समझते हैं ना उलझने का, मन उलझ गया है, संबंधियों ने उलझा दिए हैं, किसी भी कारण से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो जरा रास्ता निकालें। रास्ता निकल सकता है, हर व्यक्ति हर आत्मा अच्छा पुरुषार्थ कर सकती है, केवल पुरुषार्थ करने की इच्छा होनी चाहिए। आप सभी ने नहीं सुनी होगी कहानी जगदीश भाई की, जो अब नहीं है यहाँ, कहाँ से उन्हें बाबा के द्वारा लिखने का वरदान मिला था। पार्टी आई थी दिल्ली से, उसमें कई भाई थे अच्छे पढ़े लिखे, बाबा ने काम दिया कि ये काम कहीं बाबा को कुछ भेजना था लिख के, सभी बच्चे लिख कर लाओ। सभी ने तो ये सोचा कि कल लिख लेंगे, बाइक भी नहीं थी, और जगदीश भाई ने सोचा भगवान की आज्ञा है लिखकर ही सोएंगे। बाहर चले गए, जो खंभे की छोटा सा बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी तो बहुत कम होती थी ना, तब आज जैसे हेलोजिन लाइट ये बड़ी बड़ी नहीं थी, खंभे की लाइट के नीचे बैठ कर लिखा। भगवान तो देख रहा था ना, बस सारी हो गए प्रभु जी, वरदान दे दिया वहीं। तो जिसको पुरुषार्थ करना है उसके लिए मार्ग है, बहानों का तो कोई अंत नहीं, बहाने तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जिसको करना है, जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, उससे बाबा की मदद बहुत मिलती है, बहुत मदद मिलती है। ये हम सब अनुभव करें जीवन में, केवल इच्छा शक्ति हो तो कोई बाधा मनुष्य को रोक नहीं सकती। अपनी दृढ़ता की, अपनी लगन की हम करना नहीं चाहते, कमी रह जाती है, ठीक है ना बात। कोई करना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता, न माया, न परिस्थिति, न लौकिक संबंधी, कुछ नहीं। और हम ये बात बाबा की याद रखें, स्वस्थिति से परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। मनुष्य गलती कर रहा है कि वो परिस्थितियों के बदलने की इंतजार करता है, इंतजार नहीं करनी है। इस तरह परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। बहुतों के अनुभव सुनने में आते हैं, परिस्थिति जटिल होती जाती है, परिस्थितियों को जितना आप इस तरह हटाएंगे वो बढ़ती जाएंगी, परिस्थितियां हटेंगी श्रेष्ठ स्वस्थिति से, और श्रेष्ठ स्वस्थिति बनेगी श्रेष्ठ स्वमान से। ये बहुत सुंदर क्रम बाबा ने बता दिया है, स्वमान स्वस्थिति का आधार, स्वस्थिति से परिस्थिति बदल जाएंगी। तो हम मन बनाएं, पढ़ना है बाबा ने बोल दिया इस सीजन में, ये जमा करने का बैंक अभी खुला है और अभी बंद भी हो जाएगा, ये सदा नहीं चलेगा। बाकी सारे बैंक तो हो सकता है फेल भी हो जाएं, बच्चा तो ऐसा ही है, फेल हो जाएंगे। और संसार पर जैसे अमेरिका में पड़ी ना अभी मार, ऐसे ही हो सकता है एक बार सारे संसार पर ये धन संपदा की मार पड़ जाए, परेशान हो उठे मनुष्य, सोचने लगे सारे जीवन की कमाई गई, लेकिन ये अविनाशी कमाई जाने वाली नहीं। क्या क्या है ये अविनाशी कमाई, किस किस चीज को हमें बढ़ाना चाहिए, जरा इस पर ध्यान दें। पहली सबसे बड़ी चीज जो हमारी कमाई का मूल हम कहें वही आधार और वही इसका स्वरूप है। बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा का, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है, जितनी संकल्प शक्ति जितनी ज्यादा शक्ति कर ली, जिसके संकल्प जितने महान हो गए। दो चीजें हैं, संकल्प शक्ति और संकल्पों का खजाना। बहुत मूल्यां चली हैं इन सब दोनों पर, संकल्पों का खजाना यानी सुंदर विचार, सुंदर संकल्प, वो हमारे लिए खजाना है। हमें आनंद कौन देता है? एक सुंदर विचार। आनंद कौन छीन लेता है? एक निगेटिव विचार। दुखी कौन करता है मनुष्य को? एक कमजोर विचार। सुख मिल जाता है? एक सुंदर विचार आते ही। तो हम संकल्पों की गति को भी धीमा करें, इससे संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। कुछ योग का बल संकल्पों में भरेगा, उससे संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। और संकल्पों का खजाना कहाँ मिलता है हमें रोज? मुरलियों से। जैसा शेष संकल्पों का भंडार हमारे पास है, ऐसा चारों युगों में किसी के पास नहीं हो सकता। एक बात है, रोज भंडार मिल रहा है। ये चीजें कल्पना बन कर रह जाएंगी, सत्य की खोज होती रहेगी। कितना सुंदर ज्ञान का भंडार। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, अभी मुरली में आ चुका है, दो चार पांच दिन पहले ही, यदि शास्त्रों में ज्ञान रचन होते तो भारत बहुत साहूकार होता। ज्ञान रतन ही तो नहीं है, कहानियां हैं केवल, पूजा पाठ के कर्म कांड के विधि विधान लिखे हुए हैं केवल, ज्ञान रतन बहुत कम है। जो है वो भी चुपके विस्तार में। गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन स्पष्ट बहुत कम, छुप गया है विस्तार में। तो हम सभी सबसे पहला ध्यान देंगे संकल्प शक्ति और संकल्प के खजाने को जमा करने पर। और इसके लिए ये अपने हाथ में है कि हम अपने मन को शांत रखें या व्यर्थ में दौड़ाते भगाते रहें। ये सचमुच अपने हाथ में है। यदि मनुष्य सोच ले मुझे शांत रहना है तो रह सकता है या नहीं? परिवारों में भी मनुष्य रह सकता है शांत, यदि वो सोच ले मुझे शांत रहना है। और यदि वो हर बात में उथल पुथल करे, रिएक्शन करे, हर बात में परेशान हो, हर छोटी बात में क्या क्यों करने लगे, तो वो शांत नहीं रह पाएगा। हर एक के अपने हाथ में है शांत रहना। मुझे बाबा की इस बार की एक बात भी सबको याद दिलानी है, सिंपल बात है, लेकिन हम लोग जरा ज्ञान में आगे चलते चलते उन चीजों के महत्व को भूल जाते हैं। गीत बजा, उनका गीत था मौन की शक्ति। तो बाबा ने कहा मुख के मौन से भी सेवाओं में सहज सफलता प्राप्त होगी। इसी सीजन का महावाक्य है, शांति की शक्ति पर जो मुरली चली है। तो सबसे बड़ी शांति की शक्ति तो है मन के संकल्पों को शांत करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वाचा को शांत करना भी शक्ति जमा करने का तरीका है। तब तो अच्छे अच्छे साधक लंबा लंबा समय मौन रखते आए ना, 40 दिन, 1 साल, किसने 10 साल, 12 साल भी मौन रखा शक्तियां जमा करने के लिए, ताकि मन की गति भी धीमी हो। जितना हम बोलेंगे मन भी उतना ही फास्ट चलेगा और हमारी शक्तियां भी नष्ट होंगी। बोलने से थोड़ा सा रस मिलेगा कुछ समय, फिर रस खत्म हो जाएगा। सब इस पर भी ध्यान दें, योगियों की शोभा है अंतर्मुखता। बोल तो सभी रहे हैं, सारे संसार में लोग बहुत बोल रहे हैं, हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं। क्या भाई बाहर बहुत मनोरंजन? अच्छा, तो हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं, बड़ा सुख है। पहले तो हमारे यहाँ जहाँ था ये स्लोगन लिखा रहता था, अंतर्मुखी सदा सुखी। कम बोलेंगे तो कम सुनेंगे, तो डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। तो हम शक्तियों को अपने अंदर जमा करें, योग से तो शक्तियाँ जमा होंगी ही, उस पर बहुत ध्यान देना है। किंतु मन की गति को शांत रखते हुए, मुख को शांत रखते हुए भी हमें शक्तियाँ जमा करनी है। हमारे पास योग्यताएं बहुत रही हैं, जो आत्मा की योग्यताएं अविनाशी हैं, जो सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापुर में भी थी, सभी गहराई से विचार करें, वो अब भी बीज रूप में विद्यमान है। चाहे हमने उनको पूरी तरह खो दिया हो, लेकिन उनके बीज नष्ट नहीं हुए। वो सभी योग्यताएं, वो महानताएं हम सबके अंदर ही छुपी हुई हैं, हमें उन्हें जागृत करना है, भाग्य श्रेष्ठ बनाना है ना। फिर से जागृत होंगे स्वमान से, श्रेष्ठ स्मृतियों से। इसलिए स्वमान, श्रेष्ठ स्मृतियां हमारी अंदर की सोई हुई योग्यताओं को, शक्तियों को जागृत करेंगी। ये बात ध्यान में रखते हुए हमें स्वमान का भी बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। भाग्य बनाना है, बाबा ने यज्ञ रचकर हमारे हाथ में दे दिया है। क्यों हमारे हाथ में दिया? इस विश्वास के साथ कि ये मेरे ब्राह्मण बच्चे यज्ञ की संपूर्ण संभाल करेंगे। गीता में बहुत अच्छे शब्द हैं इसके बारे में। ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। तो देवता कौन? सब आने वाले देवता है ना, देवता कुल की आत्माएं आ रही ना यज्ञ में, हम उन्हें संतुष्ट करें, ये बहुत बड़ा पुण्य है। जो भी हमारे पास आते हैं, हम अपनी सेवाओं से उन्हें संतुष्ट करें। वो हमारे मेहमान भी होते हैं और वो यज्ञ से बहुत कुछ प्राप्त करने भी आते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए, हम सोचते हैं ना वो कोई नाराज ना होके जाए, खुश होकर जाए। हमारे यज्ञ में भी मेहमान आते हैं। बाबा कहा करते थे, सबसे अधिक भाग्यवान वो जिसके घर में ज्यादा मेहमान आए। कोई तंग भी हो जाता है, इतना पैसे कहाँ से लाएंगे, सारा दिन इन्हें चाय खिलाओ, पकौड़े खिलाओ, टोली खिलाओ, कहाँ से इतना पैसा आएगा। परंतु जिनका दिल खुला है, उनके पास कोई कमी नहीं होती। जहाँ उदारता है, जहाँ सभी को संतुष्ट करने की भावना है, वहाँ कोई कमी न घरों में होगी न यज्ञ में होगी। आज हम यज्ञ में ये सोच लें कि अरे बहुत खर्च होता है, लोग बाहर से आते हैं, हमें नहीं करना है, क्यों हम खर्च करें इतना, आएगा ही नहीं। जितनी उदारता दाढ़ी में हम सब ने देखी, कितना दाढ़ी खुश करती थी आने वालों को, दाढ़ी थोड़ा ही सोचती थी कभी ये कम हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सिद्धांत ही ये है, देने से, खिलाने से, दूसरों की सेवा करने से सब कुछ बढ़ता है। हमारे भारत की तो महान सभ्यता ही ये थी। आप में से कई जानते होंगे, लोग पहले एक भूखे को भोजन खिलाते थे, फिर खुद भोजन खाते थे। अब वो सब चीजें लोप हो गई हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत स्वार्थ आ गया है। वो सोचता है एक को भोजन खिलाएंगे, इतना खर्च कौन करेगा। अब ये विचार हो गए हैं मनुष्य के। हमारी सभ्यता बहुत मान रही है भारत की, पहले बहुतों के नियम होते थे, गरीब से गरीब का नियम होता था, एक को पहले भोजन खिलाएं, फिर हम भोजन खाएंगे। तो हम सभी अपना भाग्य निर्माण करते हैं यज्ञ सेवा से, जो सच्चे दिल से यज्ञ सेवा करते हैं, जो अपनी सेवाओं से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, जो अपना भी त्याग करके, चाहे नींद का त्याग करना पड़े, चाहे अपने सुखों का त्याग करना पड़े, जो दूसरों को सुख देते हैं, उनका भाग्य बहुत अच्छा बन जाता है। हमारे पास तन मन धन वाचा और भी मनसा सब तरह की सेवाएं हैं। हम ज्ञान देकर भी सेवा करते हैं। सबसे बड़ा भाग्य दूसरों को भगवान से मिला देना, सबसे बड़ा भाग्य किसी आत्मा को पवित्र बना देना, किसी की पवित्रता की रक्षा करना, ये बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। इस तरह हम अपने भाग्य का निर्माण करें लौकिक में रहते हुए, इस समय जबकि हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, जब हम ऊपर से जुड़ गए हैं, और ऊपर से जुड़ने के साथ हम कौन हो गए, एक बहुत अच्छा स्वमान बाबा हम सबको देता है, तुम हो गए पूर्वज, हम सभी पूर्वज। तो पूर्वजों का काम है, इसलिए दोनों चीजें हमारे काम आएंगी। हम पुण्य कर्मों का बल भी संसार की आत्मा को देंगे, और पुण्य कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण भी करेंगे। तो बाबा को महावाक्य याद कर ले जरा, तुम सभी पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। यही गति पाप कर्म के साथ भी है। पूर्वज आत्मा यदि कोई पाप कर्म करती है तो उसका इफेक्ट सभी संसार की आत्माओं पर चला जाता है। हम पुण्य कर्मों पर ध्यान दें। पुण्य कर्म सबसे पहली, पुण्य कर्म की स्थिति पवित्रता, दूसरों को सुख देना, दूसरों को समय पर सहयोग देना, और हम सबको बड़े बड़े पुण्य कर्म करने का अवसर अब मिलने जा रहा है। क्या सभी ध्यान दें उस बात पर, जो चर्चा हम करते आ रहे हैं पहले से भी, कि विनाश काल के लिए हम अपने को तैयार करें, और वो तैयारी केवल हमारी अपने लिए नहीं होगी, वो तैयारी होगी विश्व को मदद करने की। अब हम सब सुनते हैं, बिहार में बहुत बुरा हाल हुआ बाढ़ से, कितने मरे कितने बह गए उसकी बात तो छोड़ो, लेकिन कितनी परेशानी, कितनी अशांति, कितना असहाय हो जाता है मनुष्य उस समय। सरकार कुछ नहीं कर सकती, किसी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। बीमारियां फैल गई, घर उजड़ गए, लोगों की संपत्ति खेती बाड़ी नष्ट हो गई, कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहा। अनेक कष्टों से आत्माओं को गुजरना पड़ा, वो भी एक दो दिन नहीं, कितना लंबा काल, मास गुजर गए। ऐसे में हमारे द्वारा आत्माओं को शांति का दान देना, अब बीमारियां फैल रही हैं, सरकारें दवाइयां भेज रही हैं, और भी वस्त्र कंबल कई साधन जुटाए जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी क्या कोई उनके मनुष्यों को मन को शांत कर पाता है? उनका जो नष्ट हो गया उससे जो वो पीड़ित हैं, क्या उसको कोई शांत कर पाता है? ये काम करेंगे हम सब। इसलिए इस समय संसार को सकाश देना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। कोई और सेवा न करे, माताएं जो बहुत बुजुर्ग हो गई, वो सोचती हूँ हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास समय नहीं, शरीर में शक्ति नहीं, लेकिन सकाश दें। और सकाश देने के लिए मैं एक छोटी सी विधि आपके सामने रख लेता हूँ, कुछ भी न करें आप, इस स्वमान में स्थित होकर बैठ जाएं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत अच्छा स्वरूप है ये। संकल्प करें मेरे अंग अंग से शक्तियों की शांति की पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सकाश मिलती रहेगी आत्माओं की, आत्माओं को सकाश जाएगी, क्योंकि हम पूर्वज हैं। देखिए बड़ी सुख संगति है यदि हम इस स्मृति में स्थित होते हैं, ध्यान देंगे मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, तो तुरंत हम जुड़ जाते हैं अपने जन्म जन्म के भक्तों से। हमारी सकाश, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे पुण्य कर्मों का बल उन सभी भक्त आत्माओं तक जाने लगता है। अगर हम अपने कोई स्वरूप में ले आते हैं मैं पूर्वज हूँ, तो हम जुड़ जाते हैं सभी धर्मों की अनेक आत्माओं से। हमारी सकाश, हमारे वाइब्रेशंस उनको जाने लगते हैं। और यदि हम में से कोई इस स्वरूप में स्थित हो जाए मैं बाप समान हूँ, तो हम जुड़ गए संपूर्ण यूनिवर्स से, उसमें प्रकृति आ गई, जीव जंतु सब आ गए, हम जुड़ जाते हैं संपूर्ण विश्व से, जड़ चेतन सब से, और हमारी सकाश, हमारे वाइब्रेशंस उन आत्माओं को जाने लगते हैं। तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत अच्छा स्वमान है, इससे बहुत अच्छी जागृति अपने अंदर भी आएगी और हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक जाते रहेंगे। तो हम पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाएं। अब समय है भाग्य बनाने का, पूरा समय भाग्य खाएंगे हम, पूरा कल्प एक्चुअली। सत्युग और त्रेता तो हमें प्रारब्ध मिलेगी ही, लेकिन जो संस्कार, जो योग्यताएं हम यहाँ अपने में भर लेंगे, वही द्वापर के बाद भी चलेंगे। मान लो इस समय हमने देने का संस्कार अपने अंदर भर लिया, देना है, लेना कुछ नहीं है, तो हम द्वापर युग के बाद भी देते ही रहेंगे। हमारे पास इतनी संपन्नता होगी कि हम देंगे। ये बहुत सूक्ष्म संस्कार है, आजकल भी मुरली में आ गया, तुम्हें किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमारे अंदर राजाई संस्कार पैदा करना चाहते हैं। लेते तो संसार में सभी हैं, हम हैं देने वाले। ऐसे ही यदि हमने अपने जीवन को यहाँ संपूर्ण रूप से शांत कर लिया, द्वापर युग के बाद भी हम शांत रहेंगे। यदि हमारे अंदर यहाँ रहम का संस्कार भर गया, देखो बाबा बहुत जोर देते हैं रहम दिल बनो, यदि हमने यहाँ स्वयं को रहम दिल बनाया, तो द्वापर से हम बहुत रहम दिल रहेंगे, हम सबको मदद करते रहेंगे। ऐसे ही यहाँ हम बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं। सबसे सुंदर बात है, जो भी इस बात को समझ लें, ज्ञान चिंतन से, ज्ञान दान से, ज्ञान सुनने से हमारी बुद्धि दिनों दिन श्रेष्ठ होती जा रही है ना। ये बुद्धि का निर्माण है, हम योग से बुद्धि को शक्तिशाली बना रहे हैं और ज्ञान से बुद्धि को दिव्य कर रहे हैं। ज्ञान और पवित्रता जहाँ जुड़ जाती है वहाँ बुद्धि में दिव्यता आती है, और योग से उसमें शक्ति भर जाती है, तो ये शक्तिशाली और दिव्य बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। किसी भी जन्म में, चाहे हम पढ़ें, चाहे हम कोई काम सीखेंगे, चाहे हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हम समाज के बीच रहेंगे, हम किसी बड़े पद पोजीशन पर रहेंगे, देखने वालों को लगेगा ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। पढ़ाई में भी हमें ऐसे महसूस होगा हम सफल हैं। लौकिक पढ़ाई सभी पढ़ते हैं ना, कोई फर्स्ट क्लास रहे, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई असफल हो गए पढ़ने में। बीज का संगम युग पर इस समय तो हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। सभी विचार करें फिर से। अब बाबा का कहते थे 200 नाखूनों का जोड़ लगाकर इस भाग्य का निर्माण कर लें, किसी भी बात से रुके नहीं। फिर मैं आखिर में वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कहीं स्वयं को उलझाएं नहीं, न सेवाओं की फील्ड में। सेवा बिना उलझाए भी बहुत अच्छी तरह की जा सकती है। सेवाओं में उलझन है मनुष्य को किस चीज की? स्वार्थ, मैपन। ध्यान देंगे, जिस मनुष्य ने अपने स्वार्थ को पहचान लिया, मैपन ही है ये, और स्वार्थ को धीरे धीरे हटाते चलें, उसका जीवन बहुत निर्मल हो जाता है, उसको सेवाओं में बहुत सफलता मिलती है। थोड़ी सेवा करने से ज्यादा भाग्य का निर्माण होता है, और यदि सेवा करने पर, पुण्य कर्म करने पर मैंने किया ये अहम जागृत हो गया, तो सेवा नष्ट हो जाती है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी ये मान्यता रही, निष्काम भाव से पुण्य कर्म करो, मदद भी करो तो निष्काम भाव से करो। आजकल तो लोग धर्मशाला भी बनाते हैं ना, तो पहले ही इच्छा होती है जन्म जन्म मेरा नाम चलता रहे, ये मार्बल के पत्थर पर अच्छी तरह खुदवा के लिखवा देना फलाने सेठ ने ये धर्मशाला बनवाई थी, ताकि जब तक धर्मशाला जीवित रहे, उसे फूटे नहीं, तब तक मेरा नाम भी जिंदा रहे। तो बनवाने के साथ, बनवाने से पहले ही कामना हो जाती है तो पुण्य भी छीन होने लगते हैं। हम सभी निष्काम भाव अपनाएंगे और भाग्य विधाता से संपूर्ण भाग्य लेंगे। लास्ट एक बात और आपके सामने रख देता हूँ, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, होता है मनुष्य को ऐसा महसूस, तो एक बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास कर लेंगे, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा, बिगड़ा हुआ भाग्य संवरने लगेगा, बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने लगेंगे, साथ में इस खुशी और नशे को भी जरा जागृत करेंगे, मैं इस संसार में पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मनुष्य को ये नशा रहता नहीं जब भाग्य बिगड़ जाए, लेकिन बाबा से हमें क्या क्या मिला है, स्वयं भगवान हमें मिला है, इसलिए भला संसार में हम से अधिक भाग्यवान और कौन हो सकता है। कम से कम इतनी स्मृति से अपने भाग्य को याद करेंगे, और मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, ये स्मरण बहुत मदद करेगा।